नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की नारी शक्ति दृढ़ साहस, आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। नई दिल्ली में आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण को समर्पित बड़ा निर्णय लेने जा रहा है। उन्होंने कहा कि संसद नया इतिहास रचने जा रही है, जिसमें भूत और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा।
21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है, एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा।
इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण, आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज करोड़ों जन धन खातों के माध्यम से महिलाएं मुख्य धारा से जुड़ रही हैं। सरकार घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी की शत प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है और देश में किसी भी एलपीजी वितरक के पास से इसकी कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में कहा कि देश भर में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है।
डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई नॉर्मल है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग लगभग 99% तक पहुंच गई है। इसके अलावा डायवर्जन को रोकने के लिए ओटीपी बेस एलपीजी डिलीवरी की जा रही है। कमर्शियल सप्लाईज के संबंध में 70% तक रेस्टोर की जा चुकी है।
भारी उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव डॉक्टर हनीफ कुरैशी ने बताया कि सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स पर सब्सिडी को 2 साल बढ़ाकर मार्च 2028 तक कर दिया है। पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अपर सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाला जहाज जग विक्रम के 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी के साथ कल कांडला बंदरगाह पहुंचने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को समय पूर्व बताते हुए खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माले बागची की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं को ऐसी शिकायतों की सुनवाई के लिए गठित नामित अपीलीय न्यायाधिकरणों से संपर्क करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि लगभग 30 से 34 लाख अपीलें लंबित हैं, जिनमें से प्रत्येक न्यायाधिकरण 1 लाख से अधिक मामलों की सुनवाई कर रहा है। न्यायालय ने बल देते हुए कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इस बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय की देखरेख में गठित 19 न्यायाधिकरणों ने अपीलों की सुनवाई शुरू कर दी है। राज्य में मतदान 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होगा और मतगणना अगले महीने की 4 तारीख को निर्धारित है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीरभूम में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कुशासन की कड़ी आलोचना की। श्री शाह ने कहा कि सत्ताधारी दल के नेता भ्रष्ट हैं और नगर निगम और शिक्षा भर्ती, राशन वितरण और प्रधानमंत्री योजना सहित कई घोटालों में शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जनसभा में आरोप लगाया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के बाद भाजपा एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रही है। सुविख्यात पार्श्व गायिका आशा भोसले का अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। कल मुंबई के एक अस्पताल में 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। गुजरात में सुरेंद्रनगर जिले के छाराड़ गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में 7 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।